ॐ शांति, ॐ शांति। रचयिता बाप कहते हैं कि मैं ही आकर के अपनी भी पहचान देता हूं और अपनी रचना की भी पहचान देता हूं, क्योंकि मनुष्य न मुझे जानते हैं तो न मेरी रचना के बारे में जानते हैं। तो मैं खुद ही आकर बताता हूं, लेकिन कैसे बताऊं, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है। तो निराकार को अगर ज्ञान देना है, वाच करना है, बोलना है, तो शरीर जरूर चाहिए। बिगर शरीर तो वो बोलेगा कैसे, और अपना शरीर तो है नहीं उनको, तो जरूर पराए शरीर में आना पड़े। पर किसके शरीर में आए, क्योंकि उनके शरीर में आकर के वाच करना है, बोलना है, तो और मनुष्यों को सुनाना है, तो जरूर मनुष्य के तन में आएगा। परंतु फिर किस मनुष्य के तन में आएगा, तो बाबा अपने परिचय में अपने रथ का भी परिचय देते हैं कि ये जिस रथ में मैं आता हूं वो कौन है। जो शुरू में आदि में भी था, मध्य में भी था और अब अंत में भी है, उनके अनेक जन्मों का परिचय मैं ही देता हूं। तो ऐसे रथ में आऊंगा जो अनुभवी भी होगा। किसी बच्चे के रथ में तो नहीं आऊंगा, किसी साधु संन्यासी के रथ में भी नहीं आऊंगा, किसी ब्रह्मचारी के रथ में भी नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है। तो जरूर प्रवृत्ति मार्ग वाले के ही रथ में आऊंगा, और बच्चे बच्चे कहना है तो कोई छोटे बच्चे के रथ में भी नहीं आऊंगा। तो किसके रथ में आऊं, जो सबसे नंबर वन देवता है, सबसे नंबर वन भक्त है और सबसे नंबर वन मनुष्य है। तो उनके ही तन में आता हूं और उनके द्वारा ही नई रचना रचता हूं, उनके द्वारा ही मैं ज्ञान देता हूं। तो ये भगवान अपना और अपनी रचना का परिचय देते हैं। तो आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 12/6/2024 है। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। जो नंबर वन पूज्य था फिर पुजारी बना है, ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान शिव बाबा ही आकर बताते हैं। इसलिए गीता में आता है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। जो नंबर वन पूज्य था फिर पुजारी बना, ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? पिता है तो बच्चों को जरूर वर्षा देगा, तो कौन सा वर्षा बाबा देते हैं? जिसका वो सागर है, जो उनके पास होगा वही वर्षा देगा। तो वो ज्ञान का वर्षा देगा, गुणों का वर्षा देगा, शक्तियों का वर्षा देगा, जो उनके पास है। तो इसीलिए बाबा, तो प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देते हैं? उत्तर, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है, सर्व गुणों का सागर है, तो गुणों का वर्षा है तो देंगे। यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं, हमारे नाम पर लिख देते हैं, विल करते हैं, ऐसा विल कर देते हैं, कैसा विल, जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, है ना। बाप कई बार ऐसे इतना धन देता है बच्चे को, जो बच्चे को कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, इतनी संपत्ति उसको होती है। और यहाँ तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम खाते रहो, 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खूट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं, इतना धन देते हैं, कौड़ी थे और हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना लेते हो, लेकिन कैसे लेते हो, ऐसे नहीं कि ऐसे हड़प लेते हो, हा? क्या मेहनत करते हो, योग बल से लेते हो। भले खजाना सबके लिए है, लेकिन हर एक अपनी अपनी शक्ति अनुसार लेता है, इसलिए योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है, लायक ही नहीं है, ऐसे लायक नहीं है बच्चे को, थोड़ी बाप देगा पर्सा। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं, बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है, और जिन जिन की पूजा करते हैं वो सब का साकारी रूप है, एक शिव ही है जिनका निराकारी रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी फिर साकार बनी है, हर आत्मा पहले निराकार थी फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, कैसे बनती है साकार, शरीर में प्रवेश करती है तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है ही नहीं, आत्मा को शरीर ही नहीं है तो पाठ भी कैसे बजाएगी, शरीर हो तब पाठ बजाए, मूल वतन में कोई पाठ नहीं है। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं है, जब मंच पर आए तब एक्टिंग करे, घर में क्या करेगा, वो तो अपने परिवार के साथ है, वहाँ कोई शूटिंग थोड़ी होगी, तो स्टेज पर आएगा तब शूटिंग होती है। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं, आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, पार्ट पर ही फिर सारा मदार है, क्या पार्ट है उनका, उस पर मदार है सारा। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है, सब आत्मा एक जैसी है, ज्योति बिंदु स्वरूप, उसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी पार्ट में तो बहुत फर्क है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है वैसे इनकी भी आत्माएं, ब्रह्मा की भी इतनी ऐसे ही आत्माएं, शिव बाबा की भी ऐसी आत्माएं, ज्योति बिंदु आत्मा तो सबकी एक जैसी है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं, शिव बाबा की भी आत्मा हमारे जैसी है लेकिन वो परम आत्मा है, तो परम आत्मा शिव बाबा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये तो आत्मा का ही ऑक्यूपेशन है ना, ये पवित्र देवताएं हैं इसलिए उनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। कैसे बने लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक, ये भगवान द्वारा पढ़ाई पढ़कर विश्व के मालिक बने। किसने बनाया उनको विश्व का मालिक, परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो, परम आत्मा भी पढ़ाते हैं तो तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बढ़ाई ये है, तो हमारे में और उनमें क्या अंतर है, उनकी बढ़ाई क्यों है, बढ़ाई ये है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं बाप, इसलिए उनकी बढ़ाई है। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं, अब बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं, भक्ति मार्ग में शिव पर कितना फूल दूध आदि चढ़ाते हैं समझ कुछ भी नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा देवताओं ने राज्य किया इसलिए उन पर फूल चढ़ाते हैं, अब शिव पर क्यों चढ़ाते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं, दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो। शिवलिंग की भी कितनी पूजा होती है, तो उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो। देवताओं का तो फिर भी मालूम है कि वो है स्वर्ग के मालिक, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण ये मालूम है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं क्योंकि बहुत पावन है। लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं का तो फिर भी मालूम है वो स्वर्ग के मालिक है, उनको किसने बनाया ये पता नहीं है। है मालिक इसलिए पूछते, पर उनको बनाया किसने ये पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं आता कि ये भगवान है, भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं पर है सब अनजान, कितनी भक्ति करते हैं पर है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। शिव की पूजा तो बहुतों ने की होगी ना, शिव के ही भक्त होंगे। हाँ, कौन शिव के ही भक्त थे, हाथ उठाओ, ज्ञान में आने से पहले केवल शिव के भक्त, अच्छा थोड़े से, सब नहीं। हाँ अच्छा, तो बाबा कहते हैं आगे कुछ भी नहीं जानते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं कुछ भी पता नहीं था। क्या ये देवताएं सुख देते हैं, अब बाबा प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये देवताएं सुख देते हैं। भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, वैसे तो यही मानेंगे ना, राजा रानी को पालनहार कहते हैं तो प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उनको तो शिव बाबा ने ऐसे बनाया ना। लक्ष्मी नारायण चलो सुख देते हैं कहो भी, पर उनको बनाया किसने इतना ऊंचा, तो बनाया तो शिव बाबा ने, तो बलिहारी तो उनकी है। ये तो सिर्फ राजाई करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, वो राजाई करते हैं प्रजा भी उनकी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं, वहां नहीं कोई प्रजा रचते हैं, प्रजा भी ऑटोमेटिक बन जाती, वो भी यहां से ही बनती है, वहां कोई कल्याण नहीं करते। सतयुग में सबका कल्याण तो हुआ पड़ा है, जो शिव बाबा अभी आके करते हैं, वहां तो केवल राजा ही करते हैं, तो बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते। अब वहां किसी का कल्याण है ही नहीं, तो फिर कल्याण करना ये तो होगा ही नहीं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। हाँ चलो, कोई कहेगा लक्ष्मी नारायण कैसे नहीं कल्याण करते, चलो करते भी हैं तो भी अल्पकाल के लिए। कैसे अल्पकाल के लिए, चलो किसी को कुछ देना है तो दे देंगे, राजा है ना, मालिक है, परंतु तो अल्पकाल के लिए। अब तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा माना परम प्लस आत्मा इक्वल टू परमात्मा, परम आत्मा माना परमात्मा कहा जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, वो परम आत्मा क्या करते हैं, परम क्यों है, वो किसमें परम है। साइज में तो परम नहीं है ना, कोई बड़ा साइज तो नहीं है उनका, पर ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में, सब में परम तो है। बस सिर्फ कह देते, अगर वो परम समझते भी हैं तो क्या कह देते उनके लिए, वो सर्वव्यापी है। समझते ये बहुत ऊंची महिमा है भगवान की करना कि वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है नाम रूप से न्यारा है, ये उनकी महिमा गाते हैं। परंतु उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है, आप फिर बाबा कहे अगर सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर तो उसको दूध आदि चढ़ाना शोभता ही नहीं है। किस पर चढ़ाते हो दूध? वो तो सर्वव्यापी है, वो तो नाम रूप से न्यारा है, फिर तो किस पर दूध चढ़ाते हो? आकार है तब तो उस पर चढ़ाते है ना। उनका उनको निराकार तो फिर कह नहीं सकते। अगर फूल दूध स्वीकार करते हैं तो फिर वो निराकार कैसे कहेंगे उनको? तुमने मनुष्य, तो तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बहुत बहस करते हैं, बाबा के आगे भी आकर के आर्ग्यू करेंगे। इसलिए बाबा कभी भी नयों से नहीं मिलते थे। बाबा कहते थे पहले तुम उनको ज्ञान सुनाओ, सारा ज्ञान उनको समझ आ जाए फिर मेरे पास ले आओ। ऐसे नहीं सीधा ले आओ कोई एकदम नए व्यक्ति को मेरे पास, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना, क्योंकि वो बड़ा होगा, पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा बहुत बुद्धिमान भी होगा, तो वो बाबा से आर्ग्यू करेगा अगर बाबा उनको कुछ देख कहेंगे भी। तो बाबा कहते बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, बहुत आर्ग्यू करते हैं, फालतू माथा खपाएंगे, बाबा का भी माथा खपाएंगे। इसीलिए पहले आप उनकी हड्डी नरम करो फिर बाबा के पास ले आओ, तो फायदा कुछ भी नहीं, फिर बाबा का भी माथा खपाएंगे। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है, नयों को समझाना तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, ये पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हैं हम? मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवताएं हैं सतयुग में, कलयुग में तो होते नहीं, राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। हाँ बाबा कहे कलयुग में तो देवताएं होते नहीं है, राम राज्य थोड़ी है कलयुग में जो पवित्र रह सके। देवी देवताएं तो पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं जैसे चित्र दिखाए ऐसे है नहीं, देवताओं के भी अश्लील चित्र बहुत दिखाए हैं। बाबा कहते ऐसे है नहीं जो अपवित्र है, ऐसे है नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र है, जगन्नाथ और सुभद्रा और उनका जो तीन दिखाते, बाबा कहते हैं उनके काले चित्र है। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। अब काले चित्र क्यों बनाए है बाबा ने, हंसी की बात कही है। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है। जगन्नाथ मंदिर है, काले चित्र हैं, तो माया जीते जगत जीत, तो फिर उनको जगन्नाथ कह दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए, बाहर सब गंदे चित्र, अभी तो हटा दिए सब, लेकिन उस समय तो थे गंदे चित्र। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए, देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े। अब क्यों काले चित्र दिखाए हैं? बाबा कहते हैं वो वाम मार्ग में गए तब विकारी बने, तो काले चित्र दिखाए। उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कब हम पूज्य थे, 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में भी काला चित्र दिखाते हैं, या माउंट आबू में ना रघुनाथ का मंदिर, तो वो भी काला चित्र दिखा दिया। अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। हाँ क्या समझाते हैं? ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। नासिक में है गोरा राम और काला राम, दोनों मंदिर है, दो मंदिर है, राम काला राम का भी मंदिर है, गोरा राम का भी मंदिर है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते हैं। विकारी बन गए तो देवता थोड़ी कहेंगे। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है। काला काली मूर्ति, ये निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, तो शिव बाबा को भी काला दिखा दिए ना। शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं है, बाबा कहते वो तो हीरा है, शिव बाबा तो हीरा है। अब हीरा थोड़ी काला कभी बनेगा, वो तो चमकता ही रहता है। पर तो कई ऐसे काले पत्थर भी वो चमकते हैं ना। तो वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, तो बाबा कहते काला शिव बाबा तो बनता ही नहीं, हो तो हीरा है। जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं वो तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है। कोई काला होगा, बाबा सी में कहते हैं, कोई काला होगा उसने बैठ काला बनाया होगा। हाँ, उसके सोचा होगा मेरे जैसा बनाऊं। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया। कृष्ण कहते हैं ना अपनी यशोदा मैया को, राधा तो गोरी है मैं क्यों काला हूँ, तो मैं क्यों काला हूँ। तो कोई तो बाबा कहे, शिव बाबा कहते हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया, मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। बाबा सदैव गोरा है। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, जो सबको हीरा बनाने वाला, फिर बाबा कहते उनको काला दिखा दिया। सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है। बाबा को भी लगता है मुझे मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया। अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो भी बाबा ने समझाया। कैसे पाएंगे ऊंच पद, सतयुग में आएंगे वो तो ठीक है, बाबा बाबा कहा बच्चे कहा खुद को तो सतयुग में तो आएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने के लिए क्या करना होगा। बाबा ने एक ही शब्द दिया है, ऊंच पद पाने के लिए फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको करना है, उसको कहेंगे फॉलो फादर, वो तब ऊंच पद पा सकेंगे। जैसे इसने यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। शिव बाबा ने इनको कहा कि अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी माताओं के आगे रख दो, फट से कर दिया। पर इतना ही केवल नहीं, चल अचल प्रॉपर्टी नहीं लेकिन बुद्धि भी, मन बुद्धि भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दे दी। सद्बुद्धि कैसे बनी, जब अपनी बुद्धि को भी सरेंडर किया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, शिव जो भी है शिव बाबा है। तो नहीं तो मैं का अभिमान तो आता है ना, भले सरेंडर किया भी तो भी कईयों का अभिमान थोड़ी छूटता है। कितने कहेंगे मैंने इतना दिया मैंने इतना दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो कभी एक शब्द नहीं कहा मैंने इतना दिया। हाँ, तो बाबा कहते बाबा ने अपनी बुद्धि भी सरेंडर कर दी, अभिमान भी सरेंडर कर दिया, सब कुछ तन मन तन धन तो सरेंडर करना सहज है, लेकिन मन बुद्धि भी पूरी सरेंडर, जी बाबा बस यही कहा। तो बाबा कहते हैं जैसे इसने बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सबको दे दिया। बस साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार, फिर भी इतना धन तो था जो 14 साल पालना की ना बच्चों की, कैसे की होगी। धन तो बाबा ने लगाया, कोई अगर ले भी आए तो कितना लाए होंगे, पर सारा धन तो बाबा का लगा। तो न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए। अब हम बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा जो कुछ भी खान पान रहन सहन सब बीच का होना चाहिए। हाँ, बहुत पॉश वो भी नहीं और एकदम भिखारी की तरह भी नहीं, साधारण। इसलिए मैं बताती हूँ, दादी जी हर बात के लिए हमेशा कहती थी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। सिंपल भी हो ब्यूटीफुल भी हो, सुंदर भी हो पर सिंपल भी हो। तो बाबा कहे बाबा अभी भी कहते तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा कोई ठाट वाट तो बाबा का कोई था ही नहीं, साधारण ही देखने में आते। तुमको कहते हैं, लोग कहते हैं ना, तुमको क्या कहते हैं, कहाँ है भगवान दिखाओ। अब उनको कहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो वो कहते दिखाओ भगवान हमको, कौन है भगवान दिखाओ हमें। अरे आत्मा तो बिंदी है, उनको देखेंगे कैसे। शिव बाबा भी बिंदी है, उनको देखेंगे कैसे। ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। ये आंखें तो प्रकृति की आंखें हैं, शिव बाबा तो प्राकृतिक है नहीं, तो इन आंखों से कैसे शिव बाबा को देख सकेंगे। आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार है पर जरूर शरीर में आया होगा, तभी तो हम कहते वो पढ़ाते हैं। निराकार कैसे पढ़ाएंगे, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाती हो, शरीर धारण किया है और पाठ बजाती हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मा वाच करती है ना, बोलती है, और शरीर बिना तो बोलेगी नहीं ना आत्मा, तो शरीर तो चाहिए बोलने के लिए। वाच तो शरीर से ही करेगी, आत्मा वाच करती है, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं है। भगवान वाच कहेंगे, आत्मा वाच ये शोभता नहीं है। आत्मा तो वान परस, वाणी से परे है, जब परम धाम में है तो वान परस अवस्था है, वाणी से परे अवस्था है। वाच तो शरीर से ही करेगी, वाणी से परे तो सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। शरीर बिना है, आत्मा केवल है, वो परम धाम में है, तो वाणी से परे, शरीर ही नहीं है तो बोलेगी कैसे। तो बाबा कहते हैं वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है, वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए, बिना शरीर के आत्मा वाणी में कैसे आएगी। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना, उसको रथ कहा जाता है। जिस शरीर में प्रवेश करते वो उसका रथ हो गया, नहीं तो वो सुनाए कैसे। तो बाप पतित से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात ही नहीं है, उनको शिक्षा देनी है तो कोई शरीर में आकर के शिक्षा देंगे, प्रेरणा की बात नहीं। ये तो ज्ञान की बात है ना, ज्ञान देना है तो मुख चाहिए, शरीर चाहिए, ये तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो जरूर मनुष्य में ही, किस मनुष्य में आए, कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। अपना परिचय खुद ही देते हैं रचयिता बाप, और अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। अब बहुत मनुष्य मुंझे हुए, क्यों मुंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, दिखाते ना, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारा अवतार, पर क्या क्या अवतार दिखा दें, तो कछुए में भी आया, मछली में भी आया, एक सुअर में भी आया, क्या क्या बताते हैं, तो वह क्या क्या रथ दिखा दिए हैं परमात्मा के, तो किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ न सके, कई बार बाबा कहते ना, अगर मैं कछुए के तन में आऊं और उधार करूं सारी दुनिया का, पर कछुआ की भाषा क्या होगी, कि मुझे तो सबका उधार करना है, ज्ञान देना है, तो कछुए के रूप में आओ तो कछुआ कैसे बोलेगा, मछली कैसे बोलेगी, सुअर कैसे बोलेगा, तो वो अवतार दिखा दिए। तो बाबा कहते हैं जानवर आदि में तो आ न सके, तो बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, ये तो समझ नहीं सकते, आना भी भारत में ही है, क्यों और देश में नहीं आते हैं बाबा, भारत में ही आना होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं, क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आऊंगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है। अब कलयुग अंत में आना है, जो अधर्म है चारों ओर ग्लानी ग्लानी है, तो पवित्र रथ तो मिलेगा ही नहीं शिव बाबा को। ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है, ये तो है ही रावण राज्य। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, तो ये पराए देश में है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। कितनों ने आक्रमण किया भारत पर, लेकिन भारत की संस्कृति कोई भी नष्ट नहीं कर सका। बाकी कितने देश हमने देखे हैं, उनकी जो ओरिजिनल संस्कृति वो नष्ट हो गई, एकदम नष्ट हो गई। ब्राजील में हम गए, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका, उनकी अपनी संस्कृति थी, बहुत अपनी संस्कृति थी, लेकिन वो पोर्चुगीज ने राज्य किया, स्पैनिश ने राज्य किया, सारी उनकी संस्कृति खत्म कर दी, और एकदम वो स्पैनिश और पोर्चुगीज ही बोलते हैं। उनकी जो अपनी ओरिजिनल संस्कृति थी वो तो खत्म ही कर दी। पर भारत में कितनों ने आक्रमण किया, पर भारत की संस्कृति मिटा नहीं सके, तो ये बहुत बड़ी बात है भारत की। तो बाबा कहते हैं, हाँ बाकी तो तुम जानते हो कि वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके। तो भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं, किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके। क्यों नहीं आ सकते साधु महात्मा में? क्योंकि वो तो हठ योगी निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, नया भक्त नहीं चाहिए, पुराना भक्त चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है इसमें आना चाहिए था, हाँ इतना बड़ा भक्त इनके तन में आना चाहिए था, कोई कहे। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं, बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आया, भक्त बन जाए, हाँ बस सब छोड़ दे, सारा टाइम भक्ति करता रहे, वो तो इस जन्म का भक्त हो गया ना। उनमें आएंगे नहीं, मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, ये हिसाब किताब कोई समझ न सके। कितनी गुप्त बातें हैं, मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर वन जो पूज्य था वही फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, खुद ही शिव बाबा कहते हैं जिस रथ में आते हैं कि ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, इनकी आत्मा पहले नंबर में जाती है। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं, मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही फिर नंबर वन राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए ना, इतनी भक्ति की तो भक्ति का फल भी मिलना चाहिए ना। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते, ये मुझ पर वारी कैसे गया, बलिहार कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए, ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है उसने यज्ञ रचा है, किसलिए किसलिए यज्ञ रचा है, ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, कितना बड़ा नाम है। अभी राजस्व का मतलब क्या है? स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? कौन सी है हमारी आहुति? क्या आहुति हम डालते? अपना तन मन धन। उन्होंने जव तिल घी ये दिखा दिया आहुति में। तो जव है ये शरीर, तिल है आत्मा, छोटी सी आत्मा मन कहो, और फिर धन है घी। तो घी लिक्विड होता है ना जैसे, तो तन मन धन ये हम तीन आहुति देते हैं। उन्होंने जव तिल घी बता दिया। आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे। सब डाल देते हैं बाबा कहे, तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। विनाश ज्वाला इसी से प्रज्वलित होनी है, यानी तुम पवित्र बन जाओगे, संपन्न बन जाओगे, तो ऑटोमेटिकली विनाश होगा। माना अंतिम आहुति हम सब अपनी डालते हैं और उससे विनाश ज्वाला निकलती है, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। एक हफ्ते का यज्ञ रखते हैं या एक महीने का रखते हैं, तो वो सामग्री ले आते हैं, थोड़ा 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 करके डालते जाते हैं, और जब आखिरी दिन होता है तो जितनी भी बाकी सामग्री बची हुई है सारी की सारी डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है वो सब डाल देते हैं बची हुई। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण मनुष्य क्या जाने, ब्रह्मा बाबा को देखकर कोई ऐसे समझेंगे नहीं ये कोई भगवान इनमें आके पढ़ाते, मनुष्य क्या जाने। उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है, क्या क्या बड़े बड़े टाइटल उन अपने पर रखते हैं, तो बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जौहरी था, इसीलिए तो कहेंगे तो जौहरी था, ये कैसे इनके तन में कैसे भगवान आएंगे, ये तो जौहरी था। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती है, बाहर में तो बाह्य रूप तो कुछ भी नहीं, साधारण है। सिर्फ इतना कह देते इसमें कोई शक्ति है, क्योंकि बाबा को देख करके श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। इतने सब भागे भागे आते थे, स्वर्ग देखते थे, बाबा को देखते ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, तो समझते इनमें कोई शक्ति है, इनमें कोई जादू है। तो बाबा कहते हैं, तो बस इतना कहते थे इनमें कोई शक्ति है, पर ये नहीं समझते इतनी इसमें शक्ति है, ये तो कहते हैं, पर ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है। ये परमात्मा की शक्ति है, ऐसे नहीं कोई भी शक्ति है, पर ये परमात्मा की शक्ति है। इसमें वो शक्ति है, चलो कह भी देते हैं, पर वो शक्ति आई कहां से? बाप ने प्रवेश किया ना, तब तो शक्ति आई। तो जो उनका खजाना है वो ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं, वो तो खोल देते हैं खजाना, लेकिन कौन ले सकते हैं ये खजाना? तुम योग बल से लेते हो ये खजाना, वो तो सर्वशक्तिवान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती है। बाबा तो सदा ही सर्वशक्तिवान है, कितना भी वो शक्ति लुटाए लेकिन उनकी शक्ति थोड़ी कम होगी। सागर कितना भी जल लुटाए लेकिन वो सागर तो कभी खूट नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, उनका खजाना ऐसे, तो बाबा कहते हैं इसमें शक्ति है, वो शक्ति भी आई कहां से? बाप ने प्रवेश किया ना, तो उनका खजाना वो ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं, योग बल से लेते हो। वो सर्वशक्तिवान है ही, तो उनकी शक्ति कहां चली नहीं जाती है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों गाया जाता है वो भी कोई जानते नहीं, क्यों उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं वो भी जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं इसमें तो सारी पूरी जंग चढ़ी हुई थी, या इस आत्मा पर पूरी जंक चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, इसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, कट जो चढ़ी है वो कोई उतार न सके। हाँ, शिव बाबा ने ही कैसे उसकी कट उतारी। बाबा कहते जंक उतारने लिए क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं ना, तो ये ज्ञान और योग इससे कट उतरती है। कट जो चढ़ी हुई है वो कोई उतार न सके, कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, ज्ञान और योग से ही कट उतरती है। वो एक ही सतगुरु है, वो एवर प्योर है, ये तुम समझते हो। ये सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, सारा सब कुछ विल जो शिव बाबा के पास है सब बच्चों को दे देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को, सारे गुण शक्तियां। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं। प्रवेश भी उसमें करते हैं, किसमें, जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना, वो भल इस समय करोड़पति है परंतु अल्पकाल के लिए। दुनिया वाले भले करोड़पति अरबपति है लेकिन बाबा कहते अल्पकाल के लिए। सबका खलास हो जाएगा, सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट्स हो, ये भी स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, ये भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसमें ही कट चढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा सबसे अच्छा पढ़ा हुआ है तो उन पर भी कट चढ़ी है। वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है, ये ड्रामा बना हुआ है। कोई कहे क्यों शिव बाबा ऐसे, क्यों ब्रह्मा बाबा में इतनी कट कहते हो, ये ड्रामा बना हुआ है, सबसे ऊंचा वही सबसे नीचे जाता है, ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वो कभी उल्टा नहीं बतलाते हैं, बाप है ट्रुथ वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े, तुम भी बताएंगे ना, और किसको कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। ट्रस्टी हो संभालना है, ऐसे नहीं दे दिया खाली हो जाओ, ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। दूसरा, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, क्या है उनकी शक्ति, पवित्रता की शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, अभी से बनो। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पूज्य देवी देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र बन गए हैं। कई ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता तो जननी है, जननी है, वो तो माँ है पवित्रता, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना पवित्रता उसको कहेंगे, जो इन सब बातों में सुख शांति की जननी बने। संकल्प में भी सुख शांति, वृत्ति में भी सुख शांति, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। आज 12 तारीख है, आज क्या अव्यक्त इशारा? जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से, अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वो फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो, अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो, सुख शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए वो महसूस करे कि यहाँ बहुत सुख शांति व शक्ति प्राप्त हो रही है, वो भी ऐसे ही महसूस करे, ऐसा वायुमंडल बना दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हमारे एक भाई है मोहित रस्तोगी जी बरेली यूपी से आए हैं, तो ये एक गीत गाना चाहते हैं। बहुत समय से इनकी इच्छा थी, मैं मधुबन